Om Shanti. Good morning. आज बाबा के 7 अगस्त के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि नई सतयुगी स्वराज्य की स्थापना का आधार क्या है। 5 बल बाबा ने बताए हैं। सबसे पहला बल है पवित्रता का बल, दूसरा बाबा कहते हैं ज्ञान योग का बल, पवित्रता के बल से पावन बनते हैं, ज्ञान योग बल से हम सशक्त बनते हैं और बाबा कहे एक मत होते हैं। तीसरा बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का बल है। चौथा बाबा ने कहा श्रीमत का बल है ना। तो ये 5 बल बाबा ने बताए, ज्ञान योग पवित्रता श्रेष्ठ कर्म और श्रीमत। उसी से सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। दूसरी बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का राज्य नहीं कहेंगे, राज्य लक्ष्मी नारायण का है। श्री कृष्ण के साथ प्यार है, श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, माताएं श्री कृष्ण को प्यार ज्यादा करती है, अपनी हमजिंस राधे को इतना प्यार नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? माताएं कृष्ण को ज्यादा प्यार करती है, राधे को प्यार करती है। आज की दुनिया में अभी राधे राधे बहुत चला है ना। तो बाबा कहते हैं कृष्ण की जयंती तो मनाते, राधे की जयंती नहीं मनाते, लेकिन अभी तो दुनिया में राधा अष्टमी भी बहुत मनाते हैं। फिर बाबा ने आगे और अनेक बातों के ऊपर, लेकिन फोकस बाबा का आज है नई दुनिया की स्थापना और पावन बनते जाते, प्रकृति को भी पावन करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को यही अंदर में लक्ष्य रहे कि हमें पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, युद्ध आदि की कोई बात नहीं है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देती है। इसी बल से एक मत की स्थापना होती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, जैसे बाबा कहे, और वे दो शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं, बाबा आकर सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है, खेवैया भी है, बागवान भी है और सदगति दाता भी है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है, उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं यहां पवित्रता सुख शांति थी, दुख शांति से छुड़ाते हैं और पवित्रता सुख शांति में ले जाते हैं। जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते हैं। वास्तव में माताओं की हमजिंस राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों की। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते ही नहीं है। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं, बाबा खुद की भी सुनाते हैं तो सभी देवी देवताओं की भी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी है, क्या कहते हैं, शिव परमात्माए नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। मनुष्य की जीवन कहानी को क्या कहेंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री कहा जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कहेंगे। देवताओं की जीवन कहानी को हिस्ट्री नहीं कहा जाता है, है ना। तो ये भी एक नई बात बाबा ने आज मुरली में कही कि मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते हैं, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहां गए, यह बात कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है बरोबर, अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है, संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। देवता कहो या और क्या कहो, बाबा कहते देवता कहो या उत्तम पुरुष कहो, पुरुषोत्तम कहो, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। तीन स्टेजेस बताते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उसी को कहा सत्तो रजो तमो, सत्तो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उसको कहेंगे, उसको सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, और जो सुनते ही नहीं है उसको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है, बाबा कहे पढ़ाई में भी ऐसे है, सतो रजो तमो। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो, क्या कहते, यह है सच्ची गीता। बाबा कहते यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा। यहाँ क्या सुनाया जाता, सत्य नारायण बनने की कथा, अथवा सच्ची अमर कथा, अथवा सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इसमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अप्रतिज्ञा करते हो, नशा मुक्ति के लिए तो प्लेज चलता है, प्रतिज्ञा चलती है। आज बाबा एक और प्रतिज्ञा कराते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं, हम स्वराज्य स्थापन करेंगे। बाबा कहते तुम प्रतिज्ञा करते हो, हम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रदान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। ये प्रतिज्ञा करते हम भारत को सतो प्रदान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला करना है, यानी सबको खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब क्या है, पतित राज्य है, तभी तो पावन राज्य चाहते थे, राम राज्य चाहते थे। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है। रावण है पांच विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसके भी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। बाबा कहते तुम इतला करते हो कि कैसे ये राज्य भी स्थापन करेंगे, सतो प्रदान स्वर्ग का स्वराज्य श्रीमत पर, और 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, कनिष्ठ पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक ही धर्म एक ही राज्य था, बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी हो जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। बाबा कहते सतयुग त्रेता युग के अंत तक एक ही भाषा चलेगी। उस दिन भी बाबा ने कहा शुद्ध हिंदी चलेगी और कोई भाषा नहीं चलेगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं, बच्चे जानते हैं, हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिर से नजदीक आते जाते हैं, अपने घर के तरफ नजदीक आते जाते तो झाड़ दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं मुसाफिर से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे, परिवार वालों से मिलेंगे, तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। नई दुनिया का तो होगा ही, लेकिन बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते थे कि बच्चे पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है, रिफाइन होता जाता है। तो जो देरी से भी आते हैं तो भी इतना सहज ज्ञान उनको समझ में आ जाता है, बुद्धि में बैठ जाता। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्म का चित्र बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। इस समय बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। हम सदगति दाता शिव बाबा की मत से सहज राजयोग बल से अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते, तन मन धन भी अपना ही लगाते हैं, दूसरे किसी का नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं और किसी के लिए नहीं, जितना जो करते हैं अपने ही भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, जब हमारे लिए बन रहा है तो खर्चा भी हम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है, स्वराज्य स्थापन करने में जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको क्या करना है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या, पूछते बाबा, कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या। बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे, कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, पहले फीस जमा करो फिर आगे बात। वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, यहां तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे। शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है। जो पैसा लेंगे तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहां जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये भी एक कर्मों की गुह्य गति है कि किस भावना से लगाते हैं उसी भावना से उसका फल प्राप्त होता है। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहां पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं, यहां तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। शुरू में तो जब सस्ताई थी तो थोड़े में ही लग जाता था, अभी तो करोड़ों की बात हो जाती है ना। बिना कोई करोड़ के तो जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिलता है 3 पैर का, या कोई मकान भी नहीं मिलता है, खास करके बॉम्बे में तो। तो बाबा कहते छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदि पति कौन था? पांडवों का आदि पति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हो। अब यही सृष्टि पुरानी वही नहीं बनती है। सृष्टि में भारत ही था उस समय, सारी सृष्टि पर सिर्फ भारत ही था। भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है। इनको कहा जाता है रौ रौ नरक। मनुष्य की ही बात है, यहां सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी है, इस दुनिया का सुख कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा समान है, इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। जब गृहस्थ कोई छोड़ दिया तो स्वर्ग व सतयुगी दुनिया की स्थापना कर नहीं सकते हैं। भले पवित्र रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास वो पवित्रता का बल नहीं है जो हम बच्चों के पास है। श्री कृष्ण पूरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्मज्ञानी समान है, छोटा बच्चा ब्रह्मज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता है, सन्यासियों को तो फिर भी पता है विकार क्या है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। ब्रह्मज्ञानी समझते हैं, महात्मा समझते हैं। बाबा कहते छोटा बच्चा तो पवित्र फूल है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस, जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं, किसी कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी होता है, एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है। हम बाबा कंपेयर करते हैं ब्रिटिश राज की कि ब्रिटिश राज में प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं। यहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स द फर्स्ट सेकंड थर्ड बनते हैं। ये भी उन्होंने कहां से कॉपी किया है? लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, आठ गद्दी चलती है तो बाबा कहते वहां से ही तो कॉपी किए। इसलिए कहा जाता कि कृष्ण और क्रिश्चियन का संबंध है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना, तो यहां भी डिनास्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरी गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये भी घराना है, डिनास्टी भी है, घराना भी है, गद्दियां भी चलती है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। वैसे अभी एक मैंने पढ़ा कि क्राइस्ट के जीवन की 13 साल से 33 साल तक की कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पास। तो कहा जाता है कि वो 20 साल, 13 से 33 साल का 20 साल जो है वो भारत भ्रमण पर था, और भारत में कहां कहां गया था वो सारा मैप बताया है किताब के अंदर, जीसस लिव्ड इन इंडिया ऐसे कोई किताब है। तो वो किताब हाथ में आ गई तो उसमें मैप भी बताया है कहां कहां वो गया था। और फिर जहां जाता था तो वहां जो महात्मा ऋषि से मिलता था तो उनसे गीता की चर्चा होती थी, तो वो गीता ज्ञान से बहुत प्रभावित हो गया। तो उसको लगा इतना अमूल्य ज्ञान तो मुझे अपने बिरादरी वालों को देना चाहिए। इसीलिए फिर वो 33 साल की आयु में वापस जाता है, और उस समय गीता ज्ञान नहीं कहा जाता था। लोग जब सुनाते थे उनको तो कहते थे कृष्ण नीति, कृष्ण नीति, विजडम ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण नीति सुनाई तो उसने सोचा ये कृष्ण नीति तो जाकर मुझे अपने बिरादरी वालों को सुनाना चाहिए। तो वो वापस जाता है, और वापस जाने के बाद वहां के लोगों को कहता है कि मैं आपको कृष्ण नीति सुनाता हूं। तो उनको जब प्रोनाउंस करना नहीं आया तो कहा क्रिश्चियनिटी, कृष्ण नीति को क्रिश्चियनिटी कह दिया। तो इसीलिए कहा बाइबल में भी अधिकतर बातें जो मिलती है धारणा की वो गीता से ही उठाई हुई है, और इसीलिए उसको क्रॉस पर भी चढ़ाया गया कि ये आकर के हमें ये हिंदू धर्म की बातें सुना रहा है, हमको कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए वहां के राजा को कहा गया कि इसको क्रॉस पर चढ़ाओ, है ना। तब उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया। फिर उसके बाद लोगों से पूछा, जब 3 दिन तक वो कहा क्रॉस पर लटका रहा, फिर उसके बाद सोचा अब तो चिलकौवे भी उसके शरीर को खा चुके होंगे। लेकिन दूसरे दिन कहा जाता कि उसकी मां जब जाती है उस माउंट पर जहां उनको क्रॉस पर चढ़ाया था, वो जिंदा था, तो उसने कहा मुझे नीचे उतारो, और नीचे उतारा। फिर उसको गुफा में ले गए, वहां जड़ी बुट्टियां डाल करके उसको हील किया, और जब हील हो गया तब उसने कहा कि अब मेरे पीछे कोई नहीं आना, मैं वापस भारत ही जाता हूं। और वो भारत आया, श्रीनगर में रहा, तो उसकी टूम्ब श्रीनगर में मिली, जिस टूम्ब के ऊपर लिखा है कि ये किसकी टूम्ब है, सारी जो उसके घाव थे वो सब बातों का वर्णन है। तो श्रीनगर में 93 इयर्स की एज तक रहा, और उसने शरीर छोड़ा 93 इयर्स की एज में। तो कृष्ण और क्रिश्चियन का जो गहरा संबंध है बाबा बताते हैं, सब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जाकर के उसको सर्च करेंगे तो टूम भी बताई है, सब सारे फोटोग्राफ्स बताए हैं, सब कुछ बताया है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है 93 इयर्स ब्रह्मा बाबा के भी थे, इनके भी थे, फिर कहा कि श्री कृष्ण भी ग्वाला बताए उसको, गैया चराने वाला, तो उसको बताया कि शेपर्ड का बच्चा था। तो ये तो काफी चीजें कहते हैं उसके जीवन के, दोनों के जीवन की कहानी में मिलती जुलती है। तो इसीलिए कृष्ण नीति ही क्रिश्चियनिटी बनी है ना। उसके बाद फिर उनके लोगों से पूछा गया कि भाई क्या क्या वो सिखाता था, और 26 लोगों से जो बातें लिखी गई उसका फिर ओल्ड टेस्टामेंट बना। ओल्ड टेस्टामेंट में वही बातें, इसीलिए गीता की बातें ज्यादा उसमें मिलती है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है, लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोपवासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, इस पर एक कहानी भी है। दो बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गया। ये बात अभी की है, वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती है, हम बंगाली है, बाबा कहते ये है नहीं, ये मत भेद भी निकल जाना चाहिए, शारीरिक मत भेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहां सन्मुख तो ज्ञान सागर के लहरें देखते रहते हो, नदियों में तो वो लहरें नहीं होती है, लहरें होती है सागर में। सागर की एक लहर कितना नुकसान भी कर देती है। कलयुग के अंदर सागर की एक लहर नुकसान भी कर देती है, संगम युग के सागर की लहरें क्या करती है, हम बच्चों को श्रेष्ठ बना देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएगा, सुनामी तो आएगी। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो ये बॉम्बे तो रहेगी नहीं। क्या कहते हैं बाबा, ये बॉम्बे तो रहेगी नहीं। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, एक छोटा सा गांवड़ा था। ये माताएं तो भोली है, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है, यहां तो पड़ा हुआ भी सब कुछ भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहां तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की, तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में है सेकंड नंबर में है ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं है। परंतु चलते देखो कितना साधारण है, ब्रह्मा बाबा इतनी ऊंची आसामी, ब्रह्मा शिव बाबा का रथ, लेकिन चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। कईयों ने देखा भी होगा ट्रेन में, लेकिन क्या जाने कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता, ब्रह्मा बाबा की जगह अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके। पढ़ाई के समय कहेंगे एक सेल्फी, हर एक के पास मोबाइल हाथ में होता है। अगर पढ़ाए भी, गीता ज्ञान सुनाए भी, तो कहेंगे ज्ञान बाद में सुनेंगे, पहले एक फोटो हम ले लेते हैं, या कहेंगे बस दर्शन करना है। फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहां तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। इनकॉग्निटो सेना गुप्त सेना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करेंगे। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, आत्मा मेल फीमेल नहीं, शरीर मेल फीमेल बनता है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, जैसे जिसका हिसाब किताब है उस हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा, ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो, वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, जहां महाभारत है तो भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा किसको भी पता नहीं है। कहते भी है, मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूं, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूं। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूं। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती है, पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, अर्थात आगे आना चाहिए। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए माना आगे आना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। कितना नाम निकालेंगे, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा है, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। विस्तार है, जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजयी अर्थात अधिकार का अनुभव करेंगे। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए तीन बातें साथ साथ चाहिए। वो तीन बातें कौन सी है? पहली है रूहानियत, दूसरा है रुहाब और तीसरा है रहम दिल का गुण। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण, ये तीन बातें चाहिए संपूर्ण स्टेज के समीप जाने के लिए या अधिकारी बनने के लिए। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में कहां दिखाई देनी चाहिए? स्थिति में, चेहरे में व कर्म में। स्थिति, चेहरे और कर्म में दिखाई दे। स्थिति में रूहानियत, चेहरे पर रुहाब और कर्म में रहम दिल, है ना? तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तब कहेंगे प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता है, इधर उधर जा नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता है। आज का व्यक्ति इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। सभी भाई बहनों के लिए अति आवश्यक सूचना है, सुन के जाएं और जो नीचे भी होंगे